तयोरसयोरद्य तेजसा यम यो हिर्वहा अक्षिप्तं तेज एतर्हे भगवांस्तद्विद्धिदित्सते तयोर असयोरद्य तेजसा यमयोर हिवः अक्षिप्तं तेज एतर्हे भगवांस्तद्विद्धिदित्सते तौतु गिर्वाण ऋषभो दुस्तराद्धर्लोकतः हतश्रियो ब्रह्मशापात् अभूतां विगतस्मयो तौतु गिर्वाण ऋषभो दुस्तराद् त्रिलोकतः हतश्रियो ब्रह्मशापात् अभूतां विगतस्मयो तौतु गिर्वाण ऋषभो दुस्तराद् हरिलोकतः हतश्रियो ब्रह्मशापात् अभूतां विगतस्मयो कुरियर श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। वे दोनों द्वारपाल जो कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ थे, जिनका सौंदर्य तथा कांति ब्राह्मणों के शाप से घट गए थे, खिन्न हो गए और भगवान के धाम वैकुंठ से नीचे गिर गए। तदा वैकुंठधिष्णा तयोर निर्पतमानयोहो हाहाकारो महानासित विष्मान योग्येषु पुत्र कहा। तब जब जय तथा विजय भगवान के धाम से गिरे तो अपने भव्य विमानों में बैठे हुए सारे देवताओं ने निराश होकर महान हाहाकार किया। तावेव यदुना प्राप्तौ पार्षद प्रवरौ हरेः दितेर जठर निर्विष्टम काश्यपम तेज उल्बनम। ब्रह्मा ने आगे कहा, भगवान के उन दो प्रमुख द्वारपालों ने अब दीति के गर्भ में प्रवेश किया है और कश्यप मुनि के बलशाली वीर्य से वे आवृत हो चुके हैं। तात्पर्य, यहाँ पर स्पष्ट प्रमाण है कि किस तरह मूलतः वैकुंठ लोक से आने वाला जीव भौतिक तत्वों में बंदी हो जाता है। जीव पिता के उस वीर्य में शरण पाता है जो माता के गर्भ में प्रविष्ट किया जाता है और माता के पायसीकृत बिंब की सहायता से जीव विशेष प्रकार के शरीर से बढ़ता है। इस संदर्भ में यह स्मरण रखना होगा कि काश्यप मुनि का मन तब व्यवस्थित नहीं था जब उन्हें हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यप नामक दोनों पुत्रों का गर्भधान किया। अतएव उन्होंने जो वीर्य स्खलित किया वह एक साथ अतीव शक्तिशाली एवं क्रोध गुण से मिश्रित था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शिशु का गर्भधान करते समय मन को धीर तथा भक्तिमय रखना चाहिए। इस कार्य के लिए वैदिक शास्त्रों में गर्भधान संस्कार की संस्तुति की जाती है। यदि पिता का मन संयत नहीं हो तो स्खलित वीर्य बहुत अच्छा नहीं होगा। इस तरह पिता तथा माता से उत्पन्न पदार्थ के भीतर लिपटा हुआ जीव हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु जैसा आसुरी होगा। गर्भधान की परिस्थितियों का सावधानी के साथ अध्ययन करना चाहिए, यह अति महान विज्ञान है। अखल मंडलाकारा व्याप्तयेन चराचरं तत्पादरक्षतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भागवतम का तृतीय स्कंद, यहां से सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को विशेष करके भगवान के अन्य जो लीला अवतार है और भगवान की जो लीला है अलग अलग अवतारों की वो बताने के लिए शुरुआत करते हैं। वैसे तो भागवत के पहले दो स्कंद है जिसमें अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक जो विज्ञान है वो पूरी मात्रा में दिया गया है। और इसलिए कई लोग जब श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं तो विशेष करके द्वितीय स्कंद को स्किप कर देते हैं, सोचते कि वो बहुत ही कठिन है समझने, क्योंकि इस भौतिक जगत का सृजन किस प्रकार से हुआ जिसे स्वर्ग कहा जाता है उसका वर्णन द्वितीय स्कंद में आता है और वो जानना महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जब तक व्यक्ति इस संसार में हम क्यों आए और ये संसार किन मूल तत्वों का बना है ये नहीं जान पाता तब तक इससे बाहर निकलना उसके लिए कठिन है। और इसलिए द्वितीय स्कंद में इस भौतिक ब्रह्मांड के सृजन के बारे में बताया जाता है। और तृतीय स्कंद ये विशेष करके उन औपचारिकताओं को बताता है जो एक मनुष्य बनकर अगर हमें भक्ति करनी है तो किस प्रकार से उसका पालन हमें करना है। प्रभुपाद कहा करते थे आज का जो आधुनिक समाज है विशेष करके पाश्चात्य संस्कृति या पाश्चात्य जो जीवन शैली है, संस्कृति भी कह नहीं सकते क्योंकि संस्कृति यानी व्यक्ति को रिफॉर्म किया जाता है या उसको एक अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है। तो जो पाश्चात्य शैली है प्रभुपाद कहा करते कि ये बाकी कुछ नहीं है बल्कि पॉलिश एनिमल सिविलाइजेशन है। ये जीवन शैली पाशवी जीवन शैली है कि जिसमें किसी भी प्रकार की मानवीय औपचारिकताओं का संदर्भ नहीं है या उस प्रकार का जीवन वो लोग व्यतीत नहीं कर रहे हैं। और विशेष करके इस अख्यान में जहाँ पे भगवान वराह देव का जो आविर्भाव है उसके बारे में कथा आती है तो उसकी पार्श्वभूमि बताते समय ब्रह्मा जी कहते हैं कि किस प्रकार से ये जय विजय जो भगवान के अनन्य सेवक है यहाँ पे कहा गया है कि वे कौन थे, गिरवाण ऋषभ जो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है उनको भी शापित होना पड़ा। विशेष करके हम देखते हैं कि शाप उन लोगों को मिलता है जो अन्य लोगों को दुस्थिति में डाल देता है, अन्य लोगों के जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न करता है, ऐसे लोगों को सज्जन लोगों के द्वारा शाप दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो शाप उनको मिला है जो देवताओं में श्रेष्ठ है, ऐसा कौन सा कार्य किया उन्होंने कि जिनके कारण उनको शापित होना पड़ा। कई कारण बताए जाते हैं उसके, लेकिन विशेष रूप से उन कारण को हम ग्रहित धरते हैं जो कि महात्माओं ने बताया है, महात्मा वो जो जिन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय लिया। वे महात्मा कहते हैं कि एक तो अंतरंग कारण है कि भगवान अपनी लीलाओं में विशेष प्रकार का रस प्राप्त करने के लिए अपने ही भक्तों को उपयोग में लाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है मेरे भक्तों से मैं किसी भी प्रकार का व्यवहार करूं तो मुझे छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में। वही व्यवहार अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति से करूँ जिसको जिसके हृदय में मेरे प्रति प्रेम नहीं है तो मेरे पास कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि भगवान के भक्तों की स्थिति क्या रहती है। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु उनके चैतन्य शिक्षाष्टांग उनके अंतिम श्लोक में बताते हैं क्या कहते हैं, आश्लिष्यवा पादरताम विनष्टुमा अदर्शनाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातुलम्बटो। मत प्राण नाथस्तु सही बना, चाहे तो आप गले लगा लो या अपने पैरों के नीचे रौंद डालो, लेकिन आप ही मेरे केवल प्राणनाथ हैं। हालांकि उनकी कोई गलती नहीं थी, चतुष कुमार जो थे वो ब्रह्मवादी थे और ब्रह्मवादियों को भगवत धाम में प्रवेश निषिद्ध है, क्योंकि जो भगवान के निर्विकार निर्विशेष रूप के प्रति आसक्त है वो व्यक्ति भगवान के लीला और उनके साकार रूप के प्रति आकर्षित नहीं हो सकता। तो ये चतुष कुमार ये चाह रहे थे कि वे जाके भगवान का दर्शन करें वहां पर, लेकिन भगवान का दर्शन करने के लिए वही व्यक्ति पात्र होता है जो भगवान के लीलाओं का स्मरण कर सकता है, जो भगवान एक व्यक्ति है करके जिसका विश्वास है, और ये लोगों के पास था नहीं। और द्वारपालों का कार्य ये रहता है कि जो निषिद्ध लोग है उनको रोकना, तो उन्होंने अपना कार्य किया था, जो भगवान ने उनको दी गई आज्ञा थी उसका उन्होंने पालन किया था। फिर भी चतुष कुमार जो इस पूरे सृष्टि के पहले जीव है जिनका जिनको ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था और सबसे शक्तिशाली है, कहा जाता है ज्ञान में वो भगवान का ज्ञान आवेश अवतार कहा जाता है, ज्ञान शक्ति आवेश अवतार, तो ज्ञान जो है उनके पास परिपूर्ण था। फिर भी हम देखते हैं यहाँ पे कि ज्ञान के द्वारा भी भगवान को हम नहीं जान पा सकते, जो ज्ञान में सबसे बड़े चढ़े लोग है वो भी भगवान को नहीं देख सकते, रोका गया उनको। और जैसे कहा जाता है कि व्यक्ति जब धूप में चलता है तो बिना अपने मस्तक को आच्छादित करके वो चल सकता है, लेकिन अपने बिना जूते पहन के चल सकता है कड़ी धूप में? मुश्किल है। तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर भगवान के प्रति अपराध करता है तो भगवान इतना उसको गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन जब भगवान के चरणों में जो स्थित है ऐसे लोगों के प्रति अगर कोई अपराध कर बैठता है तो भगवान सबसे पहले उसकी दखल लेते हैं। तो अगर आपको भगवान को पाना है तो सबसे आसान तरीका है कि उसके भक्तों को पिला दो। तुरंत भगवान देखते कौन है, लेकिन ये उचित मार्ग नहीं है, इसके द्वारा भगवान के प्रति प्रेम नहीं निर्माण होगा। हालांकि भगवान को आप देख सकते हो लेकिन ईर्ष्या के भाव से देखोगे, फिर प्रेम से नहीं देखोगे, वो जीवन की समसिद्धि नहीं है। और विशेष करके वहां पे क्योंकि ये ज्ञान में बड़े चढ़े होते तो ज्ञानी थे, और जो व्यक्ति ज्ञान में स्थित रहता है वो सबको एक ही स्थिति में देख लेता है आत्मा के स्तर पर। तो इनको क्रोध आया, हालांकि ज्ञानवान व्यक्ति को क्रोध नहीं आना चाहिए, लेकिन जब तक भगवत भक्ति से हृदय आप्लवित नहीं होता तब तक ये जो हमारे षड रिपु है वो हम पे कार्यरत ही रहते हैं। तो चतुष कुमार क्रोध में आया और उन्होंने कहा कि तुम लोगों में भेद करने की बुद्धि है और ऐसे व्यक्ति वैकुंठ में शोभा नहीं देते, जाओ जहां पे भेद बुद्धि है ऐसे लोक में चले जाओ जहां पे द्वंद्व है। तो वैसा लोक कौन सा है? मत के लोग इस भौतिक जगत में, बोले जाओ यहां से, और फिर उनको शांत दे दिया। और ये सब चल ही रहा था आगे जाके, और क्योंकि व्यक्ति जब क्रोध के आवेश में आता है तो मालूम नहीं पड़ता कि वो क्या क्या बोलने वाला है। तो भगवान ने जैसे ही सुना कि मेरे भक्तों को वहां पे कोई शाप दे रहा है, वर्णन आता है कि वे दौड़ते हुए निकले, अपने शेषासन से उतरे, पैर में जूते भी नहीं पहने उन्होंने, दौड़ते हुए उस द्वार के पास आए जहां पे जय विजय को शापित किया जा रहा है। जब आ ही रहे थे तो जो वायु बह रही थी वहां पर, उस वायु ने भगवान के चरण कमल का में जो स्थित तुलसी है उस तुलसी का सुगंध अपने साथ वहन की, और उस सुगंध को सूंघने के पश्चात चतुष कुमारों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम निर्माण हुआ। तत्पाद सरोज सौरभ अंग है, भगवान के चरणों में स्थित जो सौरभ है उसके सुगंध के कारण ही उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम निर्माण हुआ। और फिर वो सोचने लगे, अरे हमने क्या किया, किनको शाप दे दिया, बोले आपने दे तो दिया है, वापस तो नहीं ले सकते। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि अभी आप ही कुछ कर सकते हो, क्योंकि आप ही अघटित घटना पटेसी हो, आप जो चाहे वो करवा सकते हो, हम तो नहीं, हम एक बार बोल दिया हो गया, अभी रिवर्स देना हमारा काम नहीं है। तो भगवान ने कहा कि सोचो, इन्होंने शाप दिया आपको 7 जन्म तक इस भौतिक जगत में जियो, अगर जल्दी वापस आना चाहते हो तो फिर आसुर बन जाओ। भगवान के भक्त भी भगवान से भी चालू रहते हैं, बोलते ठीक है चलो, लेकिन तुम 7 जन्म की बात कर रहे हो, हम तो 3 जन्म चाहते हैं, चाहे आसुर बनाओ या कुछ भी बनाओ, आसुर भी बनाओगे तुम हमें अपने सामने ही रखोगे, वो हमें मालूम, और ये नहीं कहने प्रकार है ना तुम्हारा ही चिंतन हमें करने को। और भगवान भी जब अपनी लीलाएं करना चाहते हैं तो अपने प्रतिद्वंद्वी को खुद होके चुनते हैं ताकि वो भी बलशाली हो। चलो फाइटिंग करना तो बच्चा पिताजी अपने छोटे बच्चे के साथ नहीं करेगा, करेगा क्या, करना है तो फिर थोड़ा बड़ा हट्टा कट्टा आदमी दिखेगा। तो भगवान भी बोले कि कम से कम मेरे बराबर का तो होना चाहिए, तो कहीं पर थोड़ा मजा आए, नहीं तो फायदा क्या। तो अपने भक्तों को ही पकड़ लेते वीर रस का अनुभव करने के लिए। तो उन्होंने जय विजय को कहा कि चाहो 3 जन्म ले लो, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, मकरण और
दंतवृक्ष।
बोले ये 3 जन्म पूरे करो वापस चलो, लेकिन सोचो ये 3 जन्म कौन कौन से युग में हुआ,
सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर,
और वो कौन से साइकिल के थे, ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने युग होते हैं, 1000 दिव्य युग होते हैं, यानी 1000 बार सत्य, द्वापर, त्रेता और कलयुग आता है। तो इसमें से कौन से युग में हुआ है,
28
नहीं, नहीं आया है। जैसे राम जी की जो लीला हुई वो ये युग की नहीं है, ये चतुर्युग की नहीं है, कभी पहले ब्रह्मा जी के पहले जो शुरुआती के जो युग थे उसमें कभी हुई नहीं। तो सोचिए कितने समय तक उनको भगवान से दूर रहना पड़ा, और उन्होंने मान भी लिया, क्योंकि वहां पे समय की गणना ही नहीं है, वहां समय चलता ही नहीं है। तो बस उनको जन्म लेना पड़ा। और प्रॉपर खास करके इस तात्पर्य में बताते हैं कि किस प्रकार से वैकुंठ लोक से व्यक्ति इस भौतिक जगत में बंदी बन जाता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में यहाँ पे नारद जी वर्णाश्रम धर्म के बारे में उपदेश देते हैं भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव को। तो वहां पे वर्णन करते हैं कि जब जीवात्मा अवजानंती भगवान को भूल जाता है तो क्या होता है उसका, स्थानात भ्रष्टा पतंति अधः, अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाता है। जीव का स्थान क्या है, भगवान के चरण कमलों में, और वहां से जब भगवान की सेवा की उपेक्षा करता है तो अपने स्थान से भ्रष्ट होकर नीचे गिर जाता है, नीचे माने इस भौतिक जगत में, और फिर अपने आप को इस भौतिक तत्वों से बंदी बनाता है। और सबसे बड़ा तत्व कौन सा है, तो ये शरीर जो पंचमहाभूतों से बना हुआ है जिसे वो बंदी बन जाता है। तो उसको बंदी बनाने के लिए किसी माता पिता के शरीर के वीर्य और डिंब ये दोनों कारणीभूत रहते हैं। और प्रभुपाद बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बताते हैं कि गर्भधान की परिस्थितियों का सावधानी के साथ अध्ययन करना चाहिए, और विशेष करके जब हम किसी समाज या किसी संघ की दृष्टि से देखते हैं तो उसमें ज्यादातर सन्यासी लोग नहीं रहते, सन्यासी रहे भी तो वो गर्भाधान का विचार क्यों करेंगे, उससे छूटने के लिए तो उन्होंने सन्यास ग्रहण किया, और ना ही ब्रह्मचारी के लिए आवश्यक, तो आवश्यक है गृहस्थों के लिए। गृहस्थ जो घर में रहता है, और घर में व्यक्ति तभी रह सकता है जब उसके पुत्र और पत्नी साथ, पति पत्नी पुत्रों के साथ जो रहता है उसको गृहस्थ कहा जाता है। इसलिए मैं शास्त्र में विधान है कि जिन लोगों को संतान नहीं होती है, क्या गृहस्थ नहीं कहा जाता उनको,